हाल के वर्षों में पुरुषों में अकेलेपन की महामारी को लेकर काफी चर्चा हुई है। यह विचार कि पुरुष अन्य लिंगों की तुलना में काफी अकेले होते हैं और इसलिए मैं कनेक्टिंग कम्युनिकेशन में एक ट्रेनर हूँ। मैंने पुरुषों और अन्य लिंगों के साथ उनके अकेलेपन और भावनात्मक रूप से संतुष्टि देने वाले गहरे संबंध बनाने के तरीकों पर काफी काम किया है और इसलिए मैं इस शब्द को लेकर काफी उत्सुक थी। और साथ ही आप जानते हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। लोग कहते हैं, हाँ यह पुरुषों के लिए एक समस्या हो सकती है, लेकिन क्या महिलाओं में असमानता का मुद्दा इससे कहीं ज्यादा बड़ा नहीं है? मेरा मतलब है, उन्हें महिलाओं की हत्या हो रही है ना? और भी कई मुद्दे हैं और इसे भटकाव नहीं बनाना चाहिए। क्या यह उससे भटकाव है वगैरह? इसलिए मैं रिसर्च के दायरे में आ गई। इस वीडियो में हम इस पर तथ्यों और आंकड़ों को देखेंगे, अकेलेपन के पीछे क्या कारण है और हम इससे कैसे उबर सकते हैं। और मैं इस समय 4 बिल्लियों की देखभाल भी कर रही हूँ, जो अकेलेपन से उबरने का शायद एक तरीका है, मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले, अकेलापन हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है? रिसर्च से पता चला है कि अकेलापन और सामाजिक अलगाव उतना ही नुकसानदायक है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। तो यह काफी नुकसानदायक है ना? ये निष्कर्ष करीब 15 साल पहले ही हो चुके थे जब रिसर्चर्स ने अकेलेपन की महामारी के बारे में बात करना शुरू किया था। और इसलिए पिछले 5 से 10 सालों में, खासतौर पर कोविड के दौरान, पुरुषों में अकेलेपन की महामारी शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ है। और यह सामाजिक विज्ञान समुदाय से नहीं बल्कि मीडिया और पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर लिखे गए ब्लॉग से आया है। तो क्या आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा अकेले होते हैं? रिसर्च, बड़े से बड़े अध्ययनों से पता चला है कि पुरुष और महिलाएं एक जैसे अकेले होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कुछ रिसर्चर्स के बारे में बताऊंगा और उन्हें नीचे लिंक भी करूंगा। उदाहरण के लिए, प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे में पाया गया कि करीब 16% अमेरिकी कहते हैं कि वे ज्यादातर समय या हर समय अकेले रहते हैं। तो यह सच है कि लंबे समय तक अकेले रहने की दर पुरुषों और महिलाओं के लिए लगभग समान है। एक और रिपोर्ट है जिसका नाम है पुरुषों का अकेलापन और अलगाव। डेटा से पता चलता है कि पिछले दशकों में पुरुषों और महिलाओं द्वारा अकेले बिताए जाने वाले समय में समान रूप से वृद्धि हुई है और उनके अकेलेपन और करीबी दोस्तों की संख्या में भी काफी समानता है। तो यह सब अमेरिकी शोध है। मुझे एक यूरोपीय शोध भी मिला जिसने इसकी पुष्टि की। यह नॉर्वे का 15 साल लंबा अध्ययन था जिसमें उन्होंने अकेलेपन और समय के साथ इसके विकसित होने के तरीके को देखा। और फिर से उन्हें लिंगों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं मिला। तो आप कह सकते हैं, ठीक है, इस तथ्य के बारे में क्या है कि पुरुष, और मैं वास्तव में इस शब्द का उल्लेख नहीं कर सकता क्योंकि तब मेरा वीडियो वास्तव में यूट्यूब पर नहीं जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, जैसे कि जब लोग इस ग्रह पर नहीं रहना चाहते हैं। पुरुषों में यह दर अधिक होती है और इसका संबंध अकेलेपन से हो सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से भी, लेकिन लोग उस तथ्य के साथ उस संख्या पर आ सकते हैं, है ना? सांख्यिकीय तथ्य। लेकिन मैंने इस पर भी गौर किया और आश्चर्यजनक रूप से मैंने पाया कि वास्तव में ये संख्याएं सफल प्रयासों की हैं। जब आप लोगों द्वारा इस धरती पर न रहने के लिए की जाने वाली वास्तविक कोशिशों को देखते हैं, तो वे या तो समान हैं या महिलाओं में अधिक हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा की जाने वाली कोशिशें कम घातक होती हैं क्योंकि वे जिस तरह के तरीके अपनाती हैं। और इस पर भी बहुत कुछ है, इसलिए मैं इसे यही रखना चाहता हूँ। तो एक चेतावनी जिसका उल्लेख करना महत्वपूर्ण है, वह है अकेलेपन को कैसे मापें। अकेलापन क्या है? तो क्या आप किसी के दोस्तों की संख्या को मापते हैं, लेकिन इससे दोस्ती की गुणवत्ता के बारे में क्या पता चलता है? तो बहुत सारे अध्ययन स्वयं रिपोर्ट पर निर्भर करते हैं। तो यह स्वीकार करना कि आप अकेले हैं, और अब इसमें मुश्किल बात यह है कि हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि पुरुषों के लिए यह स्वीकार करना अधिक वर्जित हो सकता है कि वे अकेले हैं। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े वास्तविकता को नहीं दर्शाते हैं। तो मैं यह निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ कि अकेलापन सभी लिंगों के लिए एक समस्या है ना? और यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि दूसरे लिंग के व्यक्ति की तुलना में कौन अधिक अकेला है। जैसा कि शोध से पता चलता है, मुझे लगता है ये देखना महत्वपूर्ण है कि हम अकेले क्यों हैं और हम इससे कैसे उबर सकते हैं। तो आइए इस पर नजर डालते हैं। तो पुरुष अकेले क्यों होते हैं? तो कुछ सर्वेक्षणों से पता चलता है कि हालांकि पुरुषों और महिलाओं के पास लगभग समान संख्या में लोग होते हैं जिनसे वे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पुरुष भावनात्मक समर्थन के लिए अपने दोस्तों से उतनी बार संपर्क नहीं करते जितनी महिलाएं करती हैं। एक और बात यह है कि पुरुष आमने सामने की तुलना में समूहों में अधिक मेलजोल करते हैं। और यहाँ एक धारणा यह है कि जब आप आमने सामने मिलते हैं तो आपको वास्तविक भावनात्मक समर्थन मिलने की अधिक संभावना होती है, जो कि एक धारणा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सच हो सकता है। इसलिए विशेष रूप से कोविड के दौरान पुरुषों को महिलाओं की तुलना में थोड़ी कठिनाई हुई होगी क्योंकि वे समूह की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सके, जबकि महिलाएं फिर भी किसी मित्र को कॉल कर सकती हैं और इस तरह से भावनात्मक समर्थन प्राप्त कर सकती हैं। एक और बात यह है कि महिलाओं द्वारा स्वेच्छा से पुरुषों की बहनों को डेट करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, और इसका मतलब है कि पुरुषों को दोस्ती पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है। और जैसा कि हम देखेंगे, समाज रोमांटिक रिश्तों को दूसरे रिश्तों से ज्यादा तरजीह देता है, और यह उन पुरुषों के लिए खास तौर पर परेशानी का सबब है जो शायद अपनी मर्जी से सिंगल नहीं है। इसलिए महिलाओं ने बताया कि वे पुरुषों के साथ डेट पर नहीं जाना चाहती। इसकी वजह भावनात्मक रूप से उपलब्ध न होना और इन रिश्तों में असमानता है, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुरुषों में अकेलेपन की इस महामारी के बारे में कहा है। हाँ, महिलाएं बहुत ज्यादा नखरेबाज हो गई हैं, है ना? वे पुरुषों के रोमांटिक रिश्तों की कमी को उनके अकेलेपन का कारण मानती हैं, जो कि पहले से ही एक धारणा है। उद्धरण चिन्ह, और वे कहते हैं कि आप जानते हैं, इसके लिए मूल रूप से महिलाएं ही जिम्मेदार हैं। और मुझे लगता है कि इन आंकड़ों से यह बहुत दुखद निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि इस तरह के निष्कर्ष ही असल में पुरुषों और महिलाओं को कम पुरुषों के साथ डेट पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, है ना? मेरा मतलब है विषमलैंगिक महिलाएं और उभयलिंगी महिलाएं। तो आइए देखें कि असल में क्या हो रहा है। तो आइए कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जो पुरुषों को बेहतर भावनात्मक जुड़ाव बनाने से रोकती हैं। तो हमारे समाज में पुरुषों को जो कहानियां सिखाई जाती हैं, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि मैंने इसे 5 सबसे महत्वपूर्ण बातों में समेटा है। तो यह पुरुषों के आत्मनिर्भर होने के बारे में है। तो मदद मांगना एक तरह की कमजोरी है। यह पुरुषों के गैर भावनात्मक होने के बारे में है। मेरा मतलब है कि गुस्सा ठीक है ना? लेकिन कोई अन्य भावना मौजूद नहीं है और आपको कमजोर नहीं होना चाहिए। फिर एक तत्व है जहां मैं कहूंगा कि पुरुषों के लिए अन्य पुरुषों के साथ दोस्ती करना। आपको कोमल कोमलता या सामान्य रूप से शारीरिक स्पर्श की अनुमति नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि होमोफोबिया और पुरुषों के साथ घनिष्ठता के रूप में पहचाने जाने के डर का स्तर बहुत अधिक है। और अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि शोध से यह भी पाया गया है कि पुरुषों के लिए भरण पोषण करना और करियर बनाना महिलाओं की तुलना में उनकी पहचान का अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो एक अच्छा दोस्त होना ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको कोई दर्जा मिलता है, या आपने शायद किसी मॉडल को ये कहते हुए देखा हो कि यह एक सफल या संतुष्ट जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और फिर महिलाओं के अकेलेपन के कारणों के बारे में शोध से पता चला है कि महिलाओं के लिए यह मुख्य रूप से असमान भावनात्मक श्रम के कारण होता है। इसलिए वे अक्सर रिश्तों में लेने से ज्यादा देना सीख जाती हैं, जिससे वे अकेली और थकी हुई महसूस करती हैं। पुरुषों की तरह ही उन पर भी रोमांटिक रिश्तों को लेकर दबाव होता है। उन्हें सिखाया जाता है कि उनका आत्ममूल्य आदर्श रूप से एक पुरुष द्वारा चुने जाने से जुड़ा है, जिससे वे फिर से दोस्ती में थोड़ा कम निवेश करती हैं। लेकिन यह पुरुषों और महिलाओं के बीच कुछ हद तक समान है, मैं कहूंगा, हालांकि महिलाओं के लिए चुने जाने का थोड़ा अधिक महत्व हो सकता है। फिर शोध से पता चला है कि महिलाएं देखभाल करने में बहुत अधिक समय बिताती हैं, चाहे वह बच्चों, बुजुर्गों, माता पिता या उनके साथी की हो। इसलिए वे सामाजिक रूप से थकी हुई होती हैं। उनके पास दोस्ती के लिए समय या ऊर्जा नहीं होती है। हालांकि, जैसा कि मैंने पहले बताया, पुरुष अपनी भावनाओं को दबाना और भी सीख जाते हैं। महिलाओं के लिए उनकी मुखरता और गुस्सा दबा हुआ होता है, और इससे उन्हें यह एहसास भी हो सकता है कि वे पूरी इंसान नहीं है, उन्हें पूरी तरह से नहीं देखा जा रहा है। और क्योंकि महिलाएं अधिक समय तक जीवित रहती हैं, इसलिए जब वे पुरुषों के साथ डेटिंग करती हैं, तो जीवन के अंत में उनके विधवा होने की संभावना अधिक होती है, और उस समय दोस्ती करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए महिलाओं में जीवन के बाद के चरणों में अकेलापन अधिक होता है। महिलाओं के बीच सामाजिक तुलना अधिक होती है, खासकर सोशल मीडिया के कारण। इसलिए महिलाओं के बीच दोस्ती से अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। और अंत में, अगर यह पर्याप्त नहीं है, तो दुनिया भर में महिलाओं की आर्थिक निर्भरता अभी भी पुरुषों पर अधिक है, और इसलिए जब उनके रिश्ते संतोषजनक नहीं होते हैं, तो वे हमेशा उन्हें छोड़ नहीं पाती हैं। इसलिए वे ऐसे रिश्तों में बनी रह सकती हैं जहां उन्हें वास्तव में अकेलापन महसूस होता है। तो हम इस अकेलेपन की समस्या से कैसे उबरें? इसलिए अपनी पृष्ठभूमि और लोगों के साथ काम करने के दौरान मैंने जो देखा है, उसके आधार पर मैंने 3 तरह के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला यह है कि मैंने देखा है कि सभी लिंग के लोगों में इस बारे में काफी जागरूकता है। दरअसल, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपके लिए कुछ ऐसा कहा जो समाज ने हमें खास तौर पर जिस तरह से ढाला है उसके हिसाब से एकदम नया हो, और इसलिए यह वास्तव में जागरूकता के बारे में नहीं है, बल्कि नए व्यवहार के लिए अभ्यास के अवसर की कमी के बारे में है। इसलिए, उदाहरण के लिए, अगर आप एक पुरुष हैं और अपने पुरुष मित्रों के साथ अधिक शारीरिक संपर्क चाहते हैं, तो अकेले ऐसा करना काफी डरावना हो सकता है। ऐसा करना और गलत न समझा जाना, क्योंकि संस्कृति अभी तक नहीं बदली है। इसलिए हमें एक तरह के बीच के समय की जरूरत है, जहां नए व्यवहार का अभ्यास किया जा सके। जैसे कि एक महिला के रूप में आप अधिक मुखर हो सके और आप जानते हैं, आप गुस्से को स्वस्थ तरीके से व्यक्त कर सके। जैसे यह कैसा दिखता है ना, यह कैसा लगता है। और इसलिए इसके लिए मैं अहिंसा संचार करने की सलाह देती हूँ। इसलिए मैंने इसे शुरुआत में कनेक्टिंग कम्युनिकेशन कहा, क्योंकि मुझे यह शब्द ज्यादा पसंद है, लेकिन आधिकारिक शब्द अहिंसा संचार है। और इसलिए इसके लिए मेरे पास कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम है। मैं किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में शामिल होने की सलाह देती हूँ। यह मेरे साथ ही होना जरूरी नहीं है, बस किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके साथ तालमेल बिठा सके, है ना। लेकिन यह इसका अभ्यास करने के लिए एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि ऐसे और भी लोग हैं जो यही काम करना चाहते हैं। तो यह पहली बात है। दूसरी बात, जिस पर मेरा व्यक्तिगत प्रभाव नहीं है, लेकिन यह एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमारे पास है, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे पास ऐसे बहुत से स्थान नहीं हैं जो जुड़ाव का समर्थन करते हैं, है ना। अधिकांश सार्वजनिक स्थान जहां लोग इकट्ठा होते हैं, वे ऐसे स्थान होते हैं जहां हमें कुछ न कुछ पीने की जरूरत होती है ना। हमें शराब खरीदने की जरूरत होती है, या हमें कुछ खरीदने की जरूरत होती है। जैसे अगर आप किसी मॉल में हैं, तो हमें सामान खरीदने की जरूरत होती है ना। और मुझे लगता है कि मैं केवल लाइब्रेरी को ही एक सार्वजनिक स्थान के रूप में सोच सकता हूं, जहां आप बिना पैसे खर्च किए जा सकते हैं, है ना। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सार्वजनिक स्थानों को लोगों के जुड़ाव के लिए और अधिक सुरक्षित और सहायक बनाने की आवश्यकता है, और यह मेरी विशेषज्ञता नहीं है। इसलिए अगर किसी को इस बारे में अधिक जानकारी हो, तो मैं बहुत उत्सुक रहूंगा। और अंत में, और मुझे लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण है, हमें समाज द्वारा सिखाई गई इन धारणाओं से मुक्त होने की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे एक तरीका मिला जो बेहद सफल है। इसे एफ्ट टैपिंग कहते हैं। मैं इसमें प्रमाणित प्रैक्टिशनर हूँ, और मैंने पाया कि यह तरीका क्रोनिक PTSD में मदद करने के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुआ है। इसका उपयोग युद्ध के दिग्गजों के साथ किया गया है, यानी गंभीर समस्याओं के लिए। और यह क्या करता है कि आप शरीर पर कुछ बिंदुओं को टैप करके तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करते हैं, जो तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने का चमत्कारी प्रभाव रखते हैं। और जब आप ऐसा कर रहे होते हैं, तो आप नए विश्वासों को बताते हैं और उन नए विश्वासों पर भरोसा करने के लिए अपने मस्तिष्क को फिर से जोड़ते हैं। मस्तिष्क वास्तव में बदलाव पसंद नहीं करता है, भले ही वह अधिक स्वस्थ हो। इसलिए मस्तिष्क बस चीजों को वैसा ही रखना चाहता है ना। इसलिए हमें नई चीजों पर विश्वास करने और नए व्यवहार शुरू करने और उसमें सुरक्षित महसूस करने के लिए कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता है, और यही एफ्ट टैपिंग करता है। और इसलिए मैंने आपके लिंक के आधार पर दो अलग अलग वीडियो बनाए। तो अगर आप अब खुद को उस लिंक के तौर पर नहीं पहचानते हैं, तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप पर अभी भी उसका असर हो। इसलिए मैं फिर भी वही वीडियो बनाऊंगा जो आपके जन्म के समय दिए गए लिंक से मेल खाता हो, और इससे आपको उसे फिर से समझने में मदद मिलेगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसका बड़ा असर दिखेगा। कृपया मुझे कमेंट में बताएं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आपका खास अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात की जो आपकी संस्कृति के हिसाब से अलग हो सकती हैं, जैसे कि पुरुषों का स्पर्श। मुझे पता है कि कुछ भूमध्यसागरीय देशों और कुछ अरबी देशों में भी यह बहुत अलग है। तो कृपया मुझे कमेंट में उन सभी बारीकियों और विवरणों के बारे में बताएं, और बताएं कि आप अकेलेपन का अनुभव कैसे करते हैं। और अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और थम्स अप करें। और अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो और लोगों तक पहुंचे, तो यह मेरे लिए भी बहुत बड़ी मदद होगी। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि हम इस गंदगी को बदल पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। अलविदा।